हेलो, मैं हूँ कहानी वाली कुड़ी। स्वकथा में सुनिए अमृता प्रीतम की आत्मकथा रसीदी टिकट का भाग 15। सफर की डायरी भाग 3, 26 अगस्त 1967। पोइट्री इज अ कंट्री विदाउट फ्रंटियर्स कहते हुए योगोस्लाविया वाले प्रतिवर्ष अगस्त के अंत में आकृत झील से दसियों कोसों की दूरी पर सत्रुगा शहर में दरिया के किनारे पर कविता का मेला लगाते हैं। पहले दिन केवल मैसिडोनियन भाषा की कविताएं पढ़ी जाती हैं और दूसरी रात सारी यूगोस्लाव भाषाओं और मेहमान भाषाओं के कवियों के लिए होती है। सब कवि दरिया के पुल पर खड़े होकर कविताएं पढ़ते हैं और सुनने वाले दरिया के दोनों किनारों पर बैठकर सुनते हैं। बहुत से नावों में बैठकर भी जलती हुई मशालों की और बिजली की रोशनी दरिया में झिलमिलाती है तो ये रात किसी परी कथा के समान हो जाती है। अपनी अपनी भाषाओं में कविताएं पढ़ते हैं और उनके अनुवाद यहाँ के विख्यात अभिनेता पढ़ते हैं। जब किसी देश का कवि कविता पाठ करता है तब उस देश का झंडा लहराया जाता है। आज यहाँ कविता पढ़ना मेरे जीवन का बहुत प्यारा अनुभव है। ये सब तालियां हिंदुस्तान के नाम है, कालिदास के देश के लिए, टैगोर के देश के लिए, नेहरू के देश के लिए। 30 अगस्त 1967। कल आखरिद से स्कोपिया पहुंचने के लिए जिस कार का प्रबंध किया गया था उसमें इथोपिया का एक कवि अबरा जम्बेरी भी था और इथोपिया का प्रिंस महतेमा सेलासी भी। हम अधिकांश रास्ते सत्रुगा में हुए कविता मेले की बातें करते रहे, पर एक जगह रुककर बियर का एक एक गिलास पीते हुए इथोपिया के प्रिंस का मन छलक उठा। आप कवि लोग भाग्यशाली हैं, वास्तविक संसार नहीं बसता तो कल्पना का संसार बसा लेते हैं। मैं 20 बरस वायलन बजाता रहा, साज के तारों से मुझे इश्क है, पर युद्ध के दिनों में मेरे दाहिने हाथ में गोली लग गई थी। अब मैं वायलन नहीं बजा सकता, संगीत मेरी छाती में जैसे जम गया है। इतिहास चुप है, मैं भी कल से चुप हूँ। संगीत के आशिक हाथों को गोलियां क्यों लगते हैं इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। इस प्रश्न के सामने केवल खामोशी की बंद गली है। 31 अगस्त 1967। बेलग्रेड से कोई 100 किलोमीटर दूर क्रागुएवाच शहर के पहलू में खड़े हुए दूर तक एक हरा निर्जन दिखाई देता है। इस निर्जन में 2 सफेद पंख दिखाई देते हैं, कोई 18 गज लंबे और जमीन से लगभग 10 गज ऊंचे। तब 1941 था, अक्टूबर महीने की 21 तारीख। एक स्कूल में कोई 300 बच्चे अपना पाठ पढ़ रहे थे कि जर्मन फौजों ने स्कूल को घेर लिया और एक एक बच्चे को मास्टरों के साथ गोलियों से बींध लिया। ये पत्थर के पंख एक उड़ान के स्मारक हैं, जो उन 300 बच्चों की छाती में भरी हुई थी। उस दिन पूरे शहर की आबादी कत्ल हुई थी, 7,000 व्यक्ति। आज पत्थर के 2 बुत, एक पुरुष का और एक स्त्री का, उन 7,000 खबरों के स्मारक हैं। यहाँ खड़े हुए आज जो कुछ एक जीवित मनुष्य की छाती में गुजरता है वो या तो ये है कि उसकी जीवित छाती में से मांस का एक टुकड़ा निकलकर इन बुतों में समा गया है, और या इन बुतों में से निकलकर पत्थर का एक टुकड़ा सदा के लिए उसकी छाती में उतर गया है। 9 से 22 सितंबर 1967। हंगेरियन कवि विहार बेला ने मिलते ही कहा, कोई भी आक्रमणकारी जब धरती के किसी भाग पर पांव रखता है तो सबसे पहले वहां की पुस्तकों की अलमारियां कांपती हैं, पर जब कोई कवि किसी दूर धरती के भाग पर पांव रखता है तो सबसे पहले पुस्तकों की अलमारियां और बड़ी हो जाती हैं। खुशामदीद। खुशामदीद के इन प्यारे शब्दों के बाद आज वो मशीन देखी जिस पर 15 मार्च 1848 को सांडोर पेतिफी की लिखी हुई वो विद्रोहपूर्ण कविता छपी थी जो अब यहाँ का राष्ट्रीय गीत है। आज युबाज कारोए से हुई भेंट भी बहुत स्मरणीय है। स्टालिन की मृत्यु तक इस कवि की कोई पुस्तक नहीं छप सकी थी। ये 4 वर्ष साइबेरिया के युद्ध में बंदी रहा। 1948 में रिहाई के समय इसकी जेबें टटोली गईं तो उसमें से कविताएं निकलीं, जिसके कारण उसे 1 वर्ष के लिए फिर जेल में डाल दिया गया। आज बुदापेस्ट रेडियो से बोलने के लिए और हंगेरियन लेखकों की भाषा में पढ़ने के लिए मैंने अपनी कविताएं चुनी। खुश हो कि मुझे केवल समाजवादी कविता पढ़ने का आग्रह नहीं किया गया, वही कविताएं चुनी गईं जो मैं चाहती थी। आज सांडोर राकेश ने मेरी कविताएं अनुवाद की हैं। लेखक यूनियन के कार्यालय में वहां के यशस्वी कवि गाबोर गाराई से मिलते समय फ्रांस के उस कवि से अचानक भेंट हो गई जो पिछले वर्ष जॉर्जिया में मिला था और उसने मेरी डायरी में लिखा था, अगर कभी मैं अगले वर्ष तुमसे पेरिस में मिल सकूं। पर आज उसने पहली बार मेरी कविताएं पढ़ी तो खुशी से बोल उठा, खुदा का शुक्र है कि ये कविताएं कविताएं हैं। मुझे डर था कि आप केवल समाजवादी कविताएं लिखती होंगी, और इस बात पर केवल मैं ही नहीं, मेरे पास बैठे हुए हंगेरियन कवि भी खिलखिलाकर हंसते रहे। एक कवित्री कह रही है, पूरे 10 वर्ष हमें खामोशी की एक लंबी गुफा में से गुजरना पड़ा। अब स्वीकृत मानों से हटकर लिखी हुई कविताओं का छपना संभव हो पाया है। आज बुदापेस्ट से 120 किलोमीटर दक्षिण की ओर बालातोन झील का वो किनारा देखा जहां 6 नवंबर 1926 को रविंद्रनाथ ठाकुर ने आकर एक पेड़ लगाया था और कविता लिखी थी, जब मैं इस धरती पर नहीं रहूंगा तब भी मेरा ये वृक्ष आपके बसंत को नव पल्लव कर देगा और अपने रास्ते जाते सैलानियों से कहेगा कि एक कवि ने इस धरती से प्यार किया था। वृक्ष के निकट ही रविंद्रनाथ का बुत है और बुत के निकट एक सफेद पत्थर पर वे पंक्तियां खुदी हुई हैं और तारीख पड़ी हुई है 8 नवंबर 1926। वृक्ष की एक टहनी से एक पत्ता तोड़कर देखती हूँ, ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी डंडी पर आज की तारीख पड़ी हुई है 8 सितंबर 1967। जिस कवि के नाम पर अब हंगरी का सबसे बड़ा पुरस्कार है अतिला योसेफ प्राइज, उसकी कविताएं अनुदित करते हुए मैं उस रेलवे लाइन पर गई जहां उसने आज से 30 वर्ष पहले आत्मघात किया था। वो उस दौर में पैदा हुआ जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के गुनाह के लिए कोई क्षमा नहीं थी। आतिला की कविताएं बहुत प्यारी हैं। एक ही समय में उनमें ओज भी है और कोमलता भी। उसके अंतिम दिनों की एक कविता की 2 पंक्तियां हैं, दूध के दांतों से तूने चट्टानों को तोड़ना चाहा, मूर्ख क्या सपने देखने के लिए कोई रात काफी नहीं थे। 9 अक्टूबर 1967। आज रोमानिया का वो गिरजाघर देखा जहां रूसी कवि पुष्किन को चाहने वाली ग्रीक युवती कालिप्सो की खोपड़ी रखी हुई है। रोमानिया का एक भाग ग्रीक लोगों से बसा हुआ था और जब 1832 में यहाँ तुर्क अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह हुआ तब ये लड़की भी विद्रोहियों में थी, और जब इन लोगों ने रूस के दक्षिणी भाग में शरण ली तब उसकी पुष्किन से भेंट हुई थी। पर कालिप्सो एक ऐसी कविता थी जिसके लिए पुष्किन के पास कागज नहीं था और वो निराश होकर वापस लौट आई। गिरिजा में औरतों के रहने की मनाही थी, इसलिए वो एक पुरुष साधु के वेश में गिरजा के अंदर रहने लगी। कहते हैं ये केवल उसकी मृत्यु के समय ज्ञात हुआ कि वो स्त्री थी। 1840 में उसने अपने जीवन को अपने हाथों समाप्त करते हुए एक पत्र लिखा और तकिए के पास रख दिया। गिरजा घर की गुफा में खड़ी हूँ, कानों में एक खड़का सा सुनाई देता है। न जाने बाहर पतझड़ी हवा से झूलते हुए वृक्षों के पत्तों का ये खड़का है या समय के आंचल में पड़ा हुआ कालिप्सो का पत्र हिल रहा है। 15 अक्टूबर 1967। आज मेहनत करने की अपनी आदत काम आई। जिस देश में भी जाती हूँ वहाँ की कम से कम श्रेष्ठ कविताएं और कुछ कहानियाँ अवश्य अनुवाद करती हूँ, इसलिए उन देशों के लेखकों के संबंध में मुझे कुछ जानकारी हो जाती है। कल रोमानिया से बल्गारिया पहुँची तो मालूम हुआ कि आजकल हमारी प्रधानमंत्री बल्गारिया आई हुई हैं। आज उनकी ओर से देश के प्रेसिडेंट को चाय की दावत थी। वहाँ इंदिरा जी ने अलग कमरे में बुलाकर जब मेरा प्रेसिडेंट से परिचय कराया तो बल्गारियन साहित्य के संबंध में इतनी बातें कर सकी तो वो भी हैरान थे कि मुझे उनके देश की इतनी जानकारी कैसे है। ये था अमृता प्रीतम की आत्मकथा रसीदी टिकट का भाग 15। वाचन स्वर सुखनंदन बिंद्रा का था।